Sarvadharma ಸಂಪ್ರಿತಾಸಬ್ಬಂ ಸಸಯಾನಸಸ್ಕಂದರ ವಿಧಿವದ್ಭುಜಯಂ ಚಕ್ರೇ ತ್ರಯದಾಧರಾಸನಾನ್ ಪ್ರೋವಾದಂ ಸಂಪ್ರಿತಾಸಬ್ಬಂ ಸಸಯಾನಸಸ್ಕಂದರ ವಿಧಿವದ್ಭುಜಯಂ ಚಕ್ರೇ ಸ್ವಯಾನಸ್ಕಂದರಿವದ್ರೇತಾರ್ಧನ
जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विधि ढंग से उनकी द्वारा किए गए स्वागत का स्वीकार कर राजा द्वारा प्रमोद आसन पर बैठ गए तो राजा उन्हीं गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चार कुमारों को पूजा किया। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विधि ढंग से उनके द्वारा की गई स्वागत को स्वीकार कर राजा प्रमोद आसन पर बैठ गए। राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चार कुमारों की पूजा की। ये चार कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय तथा रुद्र संप्रदाय, इन चार संप्रदायों में से कुमार संप्रदाय ने चार कुमारों के नाम से अतः प्रथम महाराज संप्रदाय आचार्य प्रजातंत्र दुनिया से लिखी। जैसे कि श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा श्रद्धा तरीके में समझ सकता है। गुरु अर्थात परंपरा अगर भगवान की ही समान अगर किया जाना चाहिए। इस श्लोक में आगत विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथम मार्ग में गुरु या आचार्य का स्वागत करते समय शास्त्र के बताई विधियों का कड़ाई से पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत उनके समर्थन समर्पित हो। ऋतु महाराज ने विधिवत यह संपन्न की। अतः यहाँ पर प्रत्यामक अंदर शब्द आई है। विनय से विनय वर्ष के कुमार ने समर्पित हो गया। ब्रह्म ज्ञान तिमिरं ध्वज ज्ञानांजन सनातय चक्रुनिमितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चन्द्रोपपदा मज्जं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दयन्ति गुरु श्रीदूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकर रघुनाथं नितं तं सजीवम्। साधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं साधन ललिता श्रीविशाखानितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण भृताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषचिह्नवादी पश्चात देशकारिणे। पञ्चाकल्पतरुवत्स कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽवतारे कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवतिशे नमः। पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताचं नमामि भक्तसात्विकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भगवानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिय। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रावं जगन्नाथाय ते नमो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पवंत सुप्रसन्नो तमनुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बाबा राम हल में अगत शनि वैष्णव एवं सर्व वैष्णव विभिन्न मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। कि प्रथम महाराज का जो प्रस्थान बहुत लंबे समय से चले आ रहा है और आप भी धारावाहिक के सामने श्रवण करते आ रहा है कि ये प्रसंग का जो नाम है चार कुमार से प्रथम महाराज की है। उसका पहले आप सुन चुके हैं कि प्रथम महाराज ने कैसे अपना प्रजा को उपदेश दिए एवं खुद अपना जीवन में उन्होंने आचरण करके प्रदर्शित किया। उन्होंने प्रजा बत्सर का प्रजा को इसी भाव से पालन कर क्या करते थे जैसे कि पुत्र को अपना अपालन किया जाता है। जैसे बंगला में एक कहावत है कि यदि कोई पुत्र अंधा भी हो उसका नाम कम्बल में चंदा होता है। लेकिन जमाना का अनुसार आप देखते हैं कि अनुभव भी है इस शास्त्र में जो वर्णन है तो आजकल जो भूपे भाई शास्त्र समाज में आप देखते हैं कि पुत्र और पिता का संबंध कैसे है एवं राजा एवं प्रजा का बीच में क्या संबंध है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उल्लेख किए हैं कि चतुर कुमार जो है इस संप्रदाय का आचार है। हमारे चार संप्रदाय जो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी उसका उल्लेख करते हैं कि संप्रदाय बिना मंत्रा से विफल मत है। तो ये चार संप्रदाय के अंतर्गत पंचरात्र के विधिवत गुरु पादशाह गुरु का आश्रय ग्रहण करता है तो भगवत धाम को वापस आए। संप्रदाय विहीन अपसंप्रदाय से यदि दीक्षा ले अपसंप्रदाय सज्ञा गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के बाद उनका गति क्या होगा, पशु जनी और बाप लगती दीक्षा भी रही थी। तो दीक्षा जो लिया ने उसको तो पशु जनी डाला ही है, लेकिन जो अपर संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं मंत्र ग्रहण करते हैं तो मंत्र से दीखा मत होता कोई काम नहीं करते। तो जितना हम अपर संप्रदाय में नाम मंत्र जप करते हैं उसका क्या फायदा है, उसका गति क्या होगा। जैसे शास्त्र का कहना है कि जेल पे लैले नाम प्रेम उपजन, लेकिन शास्त्र ये भी बताता है कि कोई संप्रदाय अंतर्भुक्त होना चाहिए। इसमें एक विजापन्न प्रश्न उठता है, इसका शास्त्र का समाधान किया है। हाँ, जो अभी संप्रदाय भिन्न अपर संप्रदाय से मंत्र लिए है उनको फिर अगले जन्म में उनको सदगुरु का संप्रदाय का था जिम्मेदार का मौका मिले, लेकिन यदि अपर संप्रदाय से विकसित हुआ, लेकिन हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी एक उठ करते हैं कि उसको 84 लाख का जुड़ में जाना ही बने। तब जब 84 लाख जुड़ी भ्रमण करने के बाद जब मनुष्य जन्म जुड़ में आएगा तब उसे मौका मिलेगा। इसीलिए जैसे भगवान धर्म का जब पतन हो जाता है अधर्म का उत्थान होता है तब भगवान हर युग में आते हैं। तब कला सत्ता में सोमतार जैसे है प्रथम महाराज ने राजा भी है और सत्ता अवतार भी सत्ता में सोमतार कि भगवान का जीव का प्रताप विशेष जीव का ऊपर आवेश होता हूं। जैसे आप सुने हैं कृष्ण दैवायन दीप में उनका प्रकट होता है इसलिए दैवान है, लेकिन कृष्ण दैवान है भगवान कृष्ण ही सच्चा देव का अवतार लेके आए, क्योंकि उनके बद्धजीव का अवस्था और मूलभूत सिद्धांत व शास्त्र को प्रयोग करने के लिए। तो यही सही इस संप्रदाय के जो आचार जब भगवत परंपरा का छिन्न हो जाता है तब उन्होंने उसको प्रतिष्ठित करने के लिए धराधाम में मनुष्य रूप में जन समाज में साधारण वध जीव का जैसे ही आरंभ उनका आविर्भाव होता है। लेकिन अपर संप्रदाय का जो भगवान का जो भगवत स्वरूप एवं वैष्णव का जो भगवत स्वरूप जो अपर संप्रदाय लोग स्वीकार नहीं करते उनका गति क्या होगा, क्या सर नारद की उनको भी नरक जाना पड़ेगा। गुरु से मरम्मती तीर्थ का जो पवित्र जल और पानी को हम साधारण पानी को समझाते हैं वह उसको उसी हिसाब से ग्रहण करते हैं या गुरु से मरम्मती। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है एवं बाहरी जगत में हमको प्रथम प्रदर्शन करने के लिए उनका आविर्भाव है व प्रकट है, उसको मनुष्य बुद्धि व मनुष्य ज्ञान में ऐसे ही सम्मान करना और जो सालग्राम सीधा कहा भगवान विग्रह को हमको मार्बल का कोई साधारण पत्थर बनते हैं तो पद्म पुराण ये वर्णन आता है कि पद्म नरक जाएंगे तो नरक तब तक रहेंगे ना जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तो कितना लंबी समय इसीलिए हमारे जो हो भौतिक दृष्टि वो दृष्टि से और हमको विपद दृष्टि तरह हो हमारे जो चेतना व दृष्टि को लेना चाहिए इसीलिए जब कोई भक्त संप्रदाय का आचार्य का पौधा को अनुसार शरणागत हो जाता है तो क्या होता है उनका हम हर दिन ही गुरु पूजा में जाते हैं विद्व ज्ञान हृदय पकड़ते चक्रदान विद गई जन्मे जन्मे प्रभु से ही विद्व ज्ञान हृदय प्रकाश जैसे माधवाचार्य का जिन्होंने आप सुने हैं उन्होंने वर्तमान में कोई भक्ति का प्रति कोई रुचि नहीं था उनका तो वो खेल कूद में आरोप समय बिता सके लेकिन शास्त्र का अनुसार भगवान भाव का अवतार है क्योंकि भगवान अपना भक्त को अपना पार्षद लोग को अब बहुत महत्व काम निभाने के लिए ये धराधाम में उनको भेज देते हैं लेकिन ऐसे समय आया तो कम उम्र में ही शास्त्र सिद्धांत को उन्होंने अध्ययन करके कंठस्थ कर दिया ऐसे कि उन्होंने जो मायावाद खंडन किया मायावाद किया है इसे आप पद्म पुराण का बात सुने होंगे शंकराचार्य ने स्वयं शंकर भगवान है जब गुणावतार का अंक माना जाता है लेकिन भगवान का निर्देश से ये मायावाद का तो मायावाद सिद्धांत को प्रचार किया और भी ये भी बतला दिया कि ये मोहित जिंदला मायावाद को प्रचार करना और हम को छुपा कर दिया लेकिन अपना हाथ से बात वही पर्दा से बादल से कभी सूर्य ढलता नहीं इसे क्या प्रमाण है भक्त जो भगवान का अवसर एवं सौंदर्य उनका जो गुणगान एवं उनका जो लीला माधुर्य और उनका जो सत्ता को उदाहरण तक कैसे ना शास्त्र सिद्धांत का अनुसार लेकिन जो मायावादी लोग जो मायावादी संप्रदाय ये भगवान का जो भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते इसीलिए शास्त्र सिद्धांत का अनुसार कि उनको साबर जो है धारण करना पड़ता है कि ये पर्वत है पहाड़ है इनका शरीर क्या है साबर है लेकिन वो भी जीव है साबर जंगम जो चलने फिरने वाला है जैसे गिरिराज महाराज मान लीजिए वो भी साबर शरीर है लेकिन भगवान के भक्त का मान कितना ऊपर रखते हैं कि स्वयं अपना कमर तरह कमर को सात दिन जबरद धारण किया पुलक सम्मनि को धोखा दे दी लेकिन धोखा इसे जान बुझ के नहीं दी कि वो तो शर्त रख दिए थे कि मेरे को जहा रखोगे मैं उठूंगा लेकिन हमारे जो संप्रदाय का अंदर हमारे जो सिद्धांत है जो मध्वाचार्य में बाल गोपाल मूर्ति को युगल मूर्ति का साधन भजन करने का उन्होंने प्रतिपाद भी नहीं किया अब क्यों नहीं उन्हें समुद्र में नौका डूबने वाला ही था उस समय कुछ आस पास मध्वाचार्य ने उपस्थित थे तो उन्होंने उनका सहारा दिया कोई कुंटल का था ना कोई टन का लेकिन उनके हर किनार पर लगाए देखो देखे कि महात्मा जी बहुत मेहनत किए उनको कुछ देना था लेकिन उन्हें फिर साधु महात्मा पैसा पत्थर लेके साला बोला के लेंगे कि नहीं क्योंकि भगवान का देखिए भक्त का माध्यम से एक लीला विस्तार करते हैं, तो उनको एक टुकड़ा तिलक दे दिए। तो तिलक लेके बाबा अपना जाग को आए, लेकिन जब टूट गए उस समय गोपाल जी वहां से प्रकट। जो गोपाल जी की इस शास्त्र का अनुसार भक्त का जीवन में जो आता है अलग अलग प्रकार का है, कि उस गोपाल को रुक्मणी जी ने सेवा किया करते थे, और कालांतर में यहाँ पर जो कुबदा जी थे उन्होंने भी सेवा की। तो उन्होंने बाल गोपाल का पतिश्र भगवान का सेवा का उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन जब विष्णु शादी संप्रदाय का है उन्हें प्रतिपादन किए कि गुप्पी ही अनुगत सेवा श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान है। कुछ मत में व्यवहारिक पंचरात्रि की विधि अनुसार कुछ पूजा पद्धति का मताने के देखा जाता है, लेकिन अपना जो संप्रदाय में किसी भी विधान परंपरा सर्जन ने प्रस्तुत किए उसी को ही हमको अनुसरण करना है। हम बतलाएंगे चार संप्रदाय में चार आचार जो है, चार प्रकार का पूजा पद्धति है, तो पंचरात्रि की विधि, लेकिन आचार्य ने स्थान काल पात्र अनुसार उसको उसी हिसाब से प्रस्तुत किए। अब देखे हुए राधा दामोदर में और राधा रमण में पूजा पद्धति का बहुत भिन्न भिन्न होता है, हमारे पूजा पद्धति से अलग है, लेकिन वो आचार्य जो स्थापित किए उसको हम नहीं कर सकते। हमारे जो प्रभुपाद उन्होंने भी आचार दे है, तो जगत गुरु भी उसका उत्पादी है, तो उसी हिसाब हमको अनुसरण करना है और उसको ही निभाना। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने शास्त्रव्रत में लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक श्लोक दिए जो कि हम गुरुवार चक्र में गाते हैं, प्रसाद अंतन समस्त शास्त्री उत्तस्तता भाव होता है एवं सभी किंतु प्रभुत्व प्रियावत वंदे गुरु की शरणारे। सभी शास्त्र गुरु को हरी का साग तोड़ना चाहिए, जिसे मायावादी लोग उनका भी मंत्र है आप सुने होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म नहीं है। क्यों? हमारे आचार्य उसका प्रतिपादन करते हैं साक्षात रीते न हरि साक्षात है, लेकिन अंतिम पारा में क्या बताते हैं, किंतु प्रभु जो प्रिय बताते हैं, प्रभु जो बहुत निकटतम अंतरंग भक्त है। मैं कुछ समय बता रहा था कि भगवान परमात्म में हर प्राणी अणु परिमाणु में ही विराजमान भी है, लेकिन एक बहिर जगत में हमको एक भटका हुआ पथ से इसे रास्ता में असली पथ को उन्होंने निर्दर्शन करने के लिए एक गुरु रूप में प्रकट। गुरु और इष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे, और गुरु और इष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बारे नारे। इतना महत्वपूर्ण बात है, यदि सदगुरु व आपने गुरु महाराज कृदान के आप कोई कारण बात अवमान कर दिया तो उन्होंने रुष्ट हो गए कृदानित हो गया उनका अवमान हो गया, तो भगवान कृष्ण उनको राख नहीं सकते, लेकिन भगवान यदि क्रुद्ध हो गए लेकिन गुरु रक्षा करने का ये हिम्मत है। इसीलिए हमको गुरु एवं भगवान को बराबर देखना चाहिए। ये नहीं कि अभी जैसे आप सुने होंगे उड़ीसा में कोई सारथी नामक एक बाबा था, उन्होंने अपना को भगवान मान लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पैर में मधु डाल देता था और भक्तों को उनका जो चले सामने जो मधु धर रहा है भगवान का पैर से, बल्कि सब बहुत बढ़िया से उसका आस्वादन किया करते थे। तो इतना ही नहीं, आप सुने होंगे कि जन्माष्टमी उत्सव पर उन्होंने गोपाल बन जाते थे। अब गोपाल बनने के बाद तो जितना भी माताएं उसी उत्सव में आते थे उनका स्तनपान किया करते थे। कितना पाखंडता है, जो माताएं जन्माष्टमी उत्सव पर उनको स्तनपान नहीं करा सकते थे वो इतना हम बुढ़वंत है कि बता दे कि हम गोपाल को आज जन्माष्टमी पर स्तनपान नहीं करें, हमारे अंदर बात कर। लेकिन ज्यादा दिन उनका नहीं चला, अभी वो जैसे भगवान तो जेल में प्रकट हुए, अभी वो क्या जेल में प्रकट हो गए, अभी जेल में भजन कर रहे हैं, तो वो अकेला नहीं उनका पुत्र का था। तो इसीलिए हमारे जो सरल भक्त है उनको सावधान रहना चाहिए। सदगुरु सब संप्रदाय से भी दिखा हो गया, लेकिन इसे राधा को ना बजाइए, शाम को बजाइए, वहां में बहुत सारे बाबा जी भी रहते हैं, कुछ सब संप्रदाय से और कोई असल संप्रदाय से। जब भक्ति भक्ति राम सरस्वती ठाकुर आए थे राधा कुंड में, तो इसे बाबा जी जी से आए थे, वो जैसे है ठाकुर का जज है, इसे उनका आप पुस्तक परिषद था, आप उन्होंने महंगा गाड़ी में आए थे। लोग सोच रहे थे कि बाबा जी लगा रहे, तो बड़ा बाबा जी है तो बहुत लंबा गाड़ी होगा, जटा जूटा होगा, कोई सारा दिन उन तुम इंतजार में थे कब उनको मिलेंगे। लेकिन शाम को समय जब देखे कि वही बाबा है जो बिहार में जैसे घूम रहे, इसीलिए हमको शास्त्र का सिद्धांत अनुसार भगवान एवं वैष्णव को चिन्ह थे। इसलिए हमारे बुद्धि एवं हमारा विवेक और हमारे जो दर्शन करने की क्षमता कितना दूर है कि वो हम तार रूप से बंधे हुए ब्रह्म प्रमाद विपरीता एवं करना पट धोखे देने का प्रवृत्ति जिनका है। लेकिन जो तो संप्रदाय को सदगुरु को का चरण आचरण नहीं लेते तो धोखे देने का प्रवृत्ति कोई बदलता नहीं है। आप देखिए जो हम इंद्र जी ने बृहस्पति जी का अवमान किया, क्योंकि धर्म सभा में भगवान का गुणगाना मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा था, जो प्रसिद्ध अवसराए है मेनका उर्वशी पुलमका नृत्यक्ति रंभा जो कि नारायण ऋषि का उरु से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम उर्वशी। यदि पुरोनवा ने भी उनका चक्कर में आए थे तो बृहस्पति जी ने वहां उपस्थिति रहते हुए इंद्र ने इतना मनोरंजन कार्यक्रम में व्यस्त थे कि गुरु जी कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन तात्पर्य हम देखते हैं कि पृथु महाराज सत्तावेश अवतार है एवं तो राजा है, उन्होंने ये जगत को कैसे आदर्श प्रस्तुत किया। जब चतुर कुमार पधारे हैं उनको बहुत बाढ़ बाढ़ से आग बने थे, इतना नहीं पहले उन्होंने अपना जितना भी प्रजा वर्ग अपना परिसर वर्ग थे मंत्री और कोतवाल बदले और प्रजा सही ये आदर्श राजा का प्रतिपादन है। लेकिन आजकल राजा का क्या है, उल्टा है। कोई मंत्री का पास मिलने जाइए वहां दस दरवान नहीं मिलेंगे, और दरवान नहीं मिले तो कुत्ता रख देंगे, क्योंकि आप कुत्ता से सावधान होंगे। इस शास्त्र का अनुसार कोई आचार्य व साधु संत के लिए ये कोई रोक टोक नहीं होती। और ये चतुर कुमार जब भगवान से मिलने गए थे पहले लोग तो सात दरवाजा तक चल गए बिना परमिशन के, लेकिन भगवत इच्छा से जय विजय ने उनको रोक दिया। जय विजय बोला कम से कम शिष्टाचार को तो पालन करना चाहिए, कम से कम धोती कपड़ा या कोपिंग का धारण करना चाहिए। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि चतुर कुमार हमेशा ही इसे ही लंका में रहते, क्योंकि प्रभात जी के इन्होंने प्रार्थना किए थे कि हमारे यदि युवक अवस्था में ये शरीर का परिवर्तन आएगा तो हम माया में फंस सकते हैं। लेकिन जय विजय को मालूम नहीं था, जय भगवान का पार्षद है, द्वारपाल है, तो उनको मालूम नहीं। लेकिन भगवत इच्छा से ये हो गया। परम भगवत का पुराण में भी ये मिलता है कि जब ततुर कुमार ने गोलोक वृंदावन गए थे, वहां भी कोई बोला उनको आरो स्वागत वेलकम नहीं किया, सीधे पहुंच गए। वहां किसी को बोले नहीं, जाकर भगवान कृष्ण को बोले, बोले कि यहाँ पर कोई रहने का कोई लायक ही नहीं है, क्योंकि भगवान का जो वृंदावन में प्रज्ञा भाव का आस्वादन करने का समय हो चुका था। तो उसी समय भगवत प्रेरणा से ही गोलोक वृंदावन में बने। तो कोई आचार्य आ रहा है, कोई गुरु आ रहा है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि गुरु आचार्य को देखने से ही नतमस्तक होना चाहिए। और एक शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है कि जब हम दंडवत साकेत दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर में बेहतर झोल लग जाता है। लेकिन अब हमारे कपड़ा अच्छा है, कोई गंदा हो जाएगा, हम उनको झाड़ देते हैं। शास्त्र में बताया कि झोल को झाड़ना नहीं चाहिए। जब झाड़ देते हैं तो कई जन्म का पुण्य क्षय हो जाता है। तो गुरु को हम तो मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं तो पूरा सीधे सीधे प्रणाम करते हैं और करना भी चाहिए। तो और भगवान को बाहर मां में रख के, नहीं तो क्या होता है, अन्यथा निपड़ा हो गई, कम निष्फल होता है। तो यहाँ पर हमारे भक्तों को भी बताते हैं, तो हम भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी को हम बाहर रख करते हैं, क्योंकि हम सीधे रख के करते हैं तो चार तो लक्ष्मी मनते हैं। इसलिए व्यवहारिक चीज में ऐसे इसका परिवर्तन किया जाता है। जब बृहस्पति जी ने देखे कि इंद्र ने हमारे कोई आगवानी नहीं किए, हमको कोई श्रद्धा भी रखे नहीं, तो उन्होंने वहां से चुपचाप चल दिए। ये गुरु रुष्ट होने का कारण क्या हुआ, वो श्री से भक्त हो गए। अब सुने होंगे कि एक बार दुर्वासा जी ने भी वैकुंठ से आए थे तो भगवान का प्रसाद भी माना उनका गला में है, भगवान डाल दिए थे। तो इंद्र ने जब रास्ता में भेंट हुआ उनका दुर्वासा जी के साथ, उन्होंने अपना ऐरावत हाथी में चढ़ के जा रहे थे, तो दुर्वासा जी को कोई प्रारंभ वाक्य से व्यवहार से कोई सीधे प्रसन्न कर सकते हो तो बाबा बहुत सारे बहुत बड़े आपको आशीर्वाद देंगे कि जो क्रोध में नहीं सकते। लेकिन बाबा जब क्रोध में आ जाते हैं लेकिन तो ब्रह्मांड आपको घुमा देंगे, अब वो दूसरा को घुमाए क्या, उसको भी घुमाना पड़ता है। जैसे अमरेश महाराज का चरण में वैष्णव का चरण में अपराध हुआ, भगवान अपना सुदर्शन चक्र को बैठते, तो दुर्वासा जी ने ये चौदह ब्रह्मांड को घूमना पड़ा। सोच लीजिए एक गुरु का अवमान करने का भाव से इंद्र का श्री हीन हो गया और एक वैष्णव का चरण में अपराध किए दुर्वासा जी ने, वो भी शंकर भगवान का अवतार है, लेकिन उनको भी चौदह ब्रह्मांड घूमना पड़ा। खुद भगवान का जो नीचे पार्षद है सुदर्शन चक्र चाहिए, तो उन्होंने अपना प्रसादी माला डाल दिए किसको, इंद्र को। लेकिन इंद्र इतना घमंड थे, उन्होंने सीधे कि ये माला इतना वो पहना था प्रसादी माला, हमको पहना दिया नहीं क्या, उसको वो अपना हाथ को हाथ में डाल दिए। उन्हें हाथी क्या समझे, प्रसादी का माला क्या गुण समझे, उन्हें अपना फोन से अपना आराम से लेके छत को चढ़ दिया। तो उसी समय भी दुर्वासा जी ने इंद्र को साफ दिए थे, इसलिए हमें मिले। तो उसी मौका में बड़ी महाराज ने उनका अर्चापुरी को आक्रमण किए थे और विशेष बात क्या है, बड़ी महाराज ने भ्रुगवंशी ब्राह्मण को वैष्णव को उसकी बात की, तो वैष्णव का ब्राह्मण का सेवा व आचार्य का सेवा शिक्षा नहीं है, इसलिए हमको सावधान बरतना चाहिए। तो बड़ी महाराज ने अलका परिवार पर जो आक्रमण कर दिए तो वो देवता लोग जाके बृहस्पति जी ने सलाह ली कि वो शिष्य का कर्तव्य होता है कि हर परिस्थिति में गुरु का सहारा बिना अलावा अपना मनमानी ढंग नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने अपना दिव्य देख लिए थे कि अभी बड़ी महाराज ने ब्राह्मण वैष्णव को सेवा करके उन्होंने इतना शक्ति इकट्ठा करके रखे हैं कि उसको कोई भी दैवी शक्ति रोक नहीं सकते। गुरु का एक कर्तव्य होता है अपना शिष्य को उसको विपद से रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आप लोग अभी जहां तहां कैसे भी रूप धारण करके ये स्वर्ग छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका जो शक्ति का सामर्थ्य का सामने हम कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी का निर्देश अनुसार सारे देवता इस स्वर्ग पर छोड़ दिए। उनका बड़े महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किए नहीं, वो फुटफल से उसका राज्य शासन किया। लेकिन नाराज होगी या बाहर दुखी होगी कौन? अदिति कश्यप मुनि बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा घर में आए, मैं अपना आश्रम में आए, देखिए अभी अदिति बहुत दुखी है। उन्होंने प्रश्न किए, घर में कोई कमी तो नहीं है? कोई अतिथि आए, आप अतिथि को कोई सत्कार नहीं किया? तो ये कितना गुरुत्वपूर्ण बात है कि कोई भी अतिथि गृहस्थ आश्रम में हो वा ब्रह्मचारी अब बालोपास्त्र व संन्यास आश्रम में हो, अति सत्कार करने का चार्य आश्रम का कर्तव्य है। इसी बात है कि कभी हमारा समर्थ नहीं है जैसे सन्यासी है। आजकल का सन्यासी के बात वाला मान क्योंकि आजकल सन्यासी के पास बहुत बलिष्ठा है तो घर बात से अतिथि कर सकता है। ये बालो प्रस्ती है, पहले जमाने में उन्होंने जो धान मचान को लेके भगवान को भोग लगा के वो गेहूँ क्या करते थे, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कैसे सत्कार करेंगे? अरे उन्हें आसन तो दे सकते हैं, ये मिट्टी बात तो कर सकते हैं, हाथ धो के उसको प्रणाम कर सकते हैं, किसी भी अति सत्कार होता। नहीं तो शास्त्र का कहना है कि आश्रम में खास कर गृहस्थ आश्रम में तो ऐसा बात है कि हार भी नहीं अतिथि आना चाहिए। नहीं तो घर क्या है जाने सर पर होने का समान है, तो समस्या का सदृश है। नहीं तो उनको गृह में भी कहा जाएगा कि प्रजा लोग जो उपदेश दे रहे थे तो प्रजा लोग बोले कुछ महाराज से कि आप हमारे अंधकार में हम जीवन यापन कर रहे थे, इसको आप दरवाजा खोल दिए, आप आलोक का बाहर अब लाइट जला दिया हमारे लिए। प्रधान को बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रथम महाराज गृहस्थ आश्रम में रहे, एक ही हमको शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में इसको निभाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, हमारे शास्त्र में जो निंदा किया है हर समस्या का प्रदर्शन पुराना बराबर है। और भी बात आप सुने होंगे, नरेश महाराज जो एक समय इंद्र का राजा बने, वह सबका थी और विद्यमान थी, और जब राजा को बन जाता है तो उसका पावर कितना होता है आप सुन लीजिए। देख लीजिए आज जगत में आजकल का राजा का प्रभाव है। तो उसी समय धर्मात्मा राजा अपना परिवार के पुत्र जैसे पालन किया करते थे एवं अपना जीवन भी आसन करते थे, तो प्रजा उनको कितना साथ दिए होंगे। नरेश महाराज ने उनका नजर कहा गया, पर आज मैं स्वर्ग का राजा हूँ, सभी संपद मेरा अधिकार में और सभी प्रजा हमारे अधीन में है, तो बाकी कम रहा मैं पति हूँ। इंद्र का पति तो पतिव्रता है, जो है वो कई पोजिशन में अथवा अधिकारी होते हैं तो उनका एक अहंकार पैदा हो जाता है, वो शुरू किया क्या होता है अपतन होता है। बोले हमारे अधीन में है सती देवी रहना चाहिए, लेकिन ये सती बहुत दुखी हो गए, गुरु महाराज से भी सलाह दिए, वो भगवान से भी सलाह दिए, उनको एक कुमंत्रणा महाराज ने पाठ सिखा दी कि आप बताइए कि नरसिंह महाराज अब स्वर्ग का राजा है, लेकिन मैं पतिव्रता होने के नाते मैं भी एक व्रत करके रखा हूँ। अब व्रत किया है ना, आज मेरा ये व्रत खत्म हो रहा है ना, अंतिम दिवस है, मैं जिसका साथ शरीर का संबंध रखूंगा तो हमको आज पालकी में लेके जाए, तब मैं आज उनका शरीर संबंध रख सकता हूँ। तो काम का आवेश में आते हैं, एक बार सर्वभौम प्रभु बोल रहे थे उर्वशी एवं पुरोगा का प्रसंग में, जो मनुष्य का अंदर काम भावना जागृत होता है इंद्र सुख भोगने के लिए, उसका धर्म वेद सर्ग विवेक सब खो देता है। तो महाराज अभी सती माता का अनुसंग लाभ करने के लिए लड़ाई से है, तो उन्होंने क्या किया, सप्तऋषि को अपना पालन भी देखिए, उन्होंने बतलाया पहले, देखिए महाराज ये आप अनैतिक व्यापार आप जो जोड़ रहे हैं, आपका विचार क्या है कि आपके लिए राजा के लिए शोभा नहीं देता है, लेकिन वो कहा के सुने मैं जो बता रहा हूँ उसे तुम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तऋषि देख लिए उसका अभी विवेक उन्होंने विवेक हो चुके हैं, उसमें कोई शास्त्र का मर्यादा सुनने वाला नहीं है, हम उसे बात नहीं मैंने तो कठोर दंड ले सकता है, कम से कम रात वहां से सती देवी का घर तक तो ले जाने का छुट्टी हो जाएगा, थोड़ा भी हो गया पार्टियों में जुटा गया सप्तऋषि को, लेकिन काम का आवेग में उन्होंने क्या किया, अब देर हो रहा था सती देवी का वास पहुंचने के लिए, बाद का माल पहुंचने के लिए, इसलिए अपना पौर से ये ब्राह्मण वैष्णव लोग को सप्तऋषि को उन्हें पधारा कर दिया। संस्कृत में शब्द आता है सफर पर, मतलब जल्दी चलिए, लेकिन कोई शास्त्र में भिन्न प्रकार का वर्णन है कि वहां पर दुर्वासा जी भी थे, अगस्ती जी भी थे, लेकिन दुर्वासा के ऊपर जब पैर लग गया तो नहीं तो आंख बदला हो गया, तुरंत बोले तुम सर पहुंच गए, ये वैष्णव का चरण में व ब्राह्मण का चरण में अपराध करने का फल देखिए तुरंत फलीभूत होता है। उन्होंने तुंगभद्रा नदी का किनारे में बहुत बड़ा सर्प होके जन्म लिया, बहुत काल तक रहे, जब पंचपांडव वनवास किया करते थे तीर्थ यात्रा किया करते थे उसी समय वहां पहुंचे कर भीमसेन, क्योंकि यह उनका ही पूर्वज है, जब वो उनको साप मिल गया तो तुम्हें तो सैन्य धारण करना पड़ा सर्प का, तो उस समय फिर माफी मांग लिया भाषा पर किए, तो बोले अभी नहीं हो सकता, तो तृतीय पांडव को आप हो, तृतीय पांडव मतलब भीम मध्यम पांडव और भीमसेन को जब आप पकड़ोगे तो आलिंगन करोगे उनका स्पर्श से आपका ये सर्प का शरीर सर्प शरीर से आपको छुटकारा मिलेगा, तो भीमसेन को जो पकड़ ले तो देखेगी बहुत देर तक भीमसेन आ रहे तो युधिष्ठिर महाराज आगे, तो उनसे जब वार्तालाप हुआ उसी से फिर नरसिंह महाराज ने अपना स्वर्ग को पता लिया, लेकिन उसमें राजा बने नहीं, इसीलिए हमें भक्तों लोग को बहुत ध्यान का चाहिए, शास्त्र का नियम एवं गुरु का निर्देश को पालन करना चाहिए। आप सुने होंगे कि एक शिष्य था जो गुरु का बात को बहुत ढंग से पालन किया करता, लेकिन कौन से परिस्थिति में गुरु का बात को कैसे पालन करना हो गए उनको हो और ध्यान में नहीं था वो नहीं कर सकते थे। एक बार अपना गुरुजी अपना घोड़ा लेके अपना गंथरी मछली लेके चल दिए उनको हो ये बताए थे कि घोड़े से जो भी पदार्थ नीचे गिर जाएगा हम उसको उठा लेंगे। तो चला ये तो बहुत खतरनाक था उन्होंने बोले गुरु जी मेरा कोई याद नहीं रहेगा अब लीची बना दीजिए। लीची लगा दिया लोटा का माल और भी इतना आसान माल था लेकिन उसमें है गुरु जी का नाम लगे नहीं एक दिन चेला नहीं बनना चाहिए हमको। जो गांव देखे कि एक गड्ढा आ गया तो घोड़ा क्या थे एकदम प्रेरित कर दिया उसे जब डैम पर लगाया तो क्या सामान तो गिरा गिरा गुरंग में गिर गया और एक चीज देखा थी स्टेशन में देखा कि सर जितना सामान है सब उठा लिया और घोड़े जो खजर में गिरा गया सवाल आया खाते पर गुरु जी बताए अरे चला तुम खेलते हो क्या है गुरु जी अरे नहीं तुमको बताया था ना जितना है सामान उतर गिरा घोड़े से और सब उठाना है तो फिर उन्हें देख रहे हाँ गुरु जी बिल्कुल सही है लेकिन आपका लीच वहां नहीं है लेकिन ऐसे सूचना नहीं आना चाहिए इसलिए ध्यान रखना चाहिए। देखिए है जाओ वो बामन का बने बड़े महाराज का जगह में पधारे हुए थे शुक्राचार्य ने वहां पर सीखा थी क्यों कि का बाराक्षत्र का गुरु है अभूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला है देखे कि बामन देव आ चुके हैं और आपने उसको बहुत ठाट बाट से आगवानी की पर बड़े महाराज हर शास्त्र में देखिए हर जगह में ये स्वागत करने का शास्त्र वर्णन करते ब्राह्मण को कैसे स्वागत करें जो छोटे से बच्चे ब्राह्मण बल्कि उसे स्वागत किए लेकिन शुक्राचार्य को पता हो गया कि ब्राह्मण देव आ चुके हैं हमारे सेना का सारा धन ले जाएंगे क्योंकि वो ऐसे गुरु थे कि अभी धन सब छोड़ चला जाएगा तो हमारा भगवान भी कौन हो जाएगा गुरु क्या है इसको गुरु को चेक करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े महाराज को क्या बोले अरे बेटा ब्राह्मण नहीं है तो कोई वैष्णव नहीं है तो सकत भगवान है अब जो संकल्प मत कीजिए। तो बड़े महाराज ने बोले कि अरे हमको सौ यज्ञ का बाद भगवान प्रकट होने कहा हो और आशा हमारा रखते है लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ उन्हें प्रकट होंगे अरे तो जिसको ब्रह्मांड लगता उनका है और भगवान भी आए छल करके मेरे को मेरा से धन लेता है तो कोई फर्क पड़ता है मैं एक बार संकल्प किया हूँ और मैं है उसको देखे रहूंगा। लेकिन बड़े महाराज जब संकल्प करने गए इस संकल्प का अंदर कौन घोषे गुरु जी घोषे लेकिन ब्राह्मण महाराज देखे गया था तुम मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है तो उसे कहा घास अंगूठी में रहता उसको मार दिया तो क्या हुआ एक गुण दिया इसलिए अभी भी कभी कभी नहीं अब चालक के नीति का अनुसार भी ये गुरुकुल त्याग ही करना चाहिए और उसको शुक्र पद को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो तात्पर्य में ये चार संप्रदाय का है बात प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है ये चार संप्रदाय का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए बात अब पढ़ना चाहते हैं पहले के चार संप्रदाय का एक ग्रंथ मिलता है उसमें आपको विशिष्टता द्वैतवाद द्वैताद्वैत और अद्वैतवाद अचित भेदावाद इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए गुरुत्वपूर्ण का बात है कि हमको जो आचार है तो गुरु को जब हम दर्शन करते हैं खास करके गुरु को तो उसको मनुष्य बुद्धि भौतिक जगत का कई महापुरुष नहीं समझाना चाहिए नहीं तो भक्ति भौतिक जगत से ही नहीं हम आध्यात्मिक जगत से भी आध्यात्मिक स्तर से भी हमारा पतन हुआ क्योंकि इंद्र का पतन हुआ नरसिंह महाराज का हुआ और वैष्णव का चरण से क्षण में अपराध करने का बाबू से दुर्गा फाड़ी की दूर मेरे हमारे आचार्य को कहना है क्या है ना हरि स्थाने अपराध काहे हरिना तुम्हारे स्थाने अपराध नहीं किया क्योंकि भगवान का नाम में अपराध हो गया तम यदि निरंतर कीर्तन या सदा हरि करते हैं तो अपराध से हम मुक्त होंगे लेकिन यदि भक्तवा भगवान का चरण में तब गुरु का चरण में यदि हमारा अपराध हो गया तो हमको भगवान भी आरोप मना कर देंगे मैं रक्षा नहीं कर सकता अरे कृष्ण कोई प्रश्न है कोई टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं समय हो चुका है हरे कृष्ण श्रीमद भागवत की सौवेद भक्त वृंद की दो प्रमाण थे महाप्रसाद की प्रसाद लीजिए चाहिए मत माता जी का हो गया